بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم کی غذا اور روح کی غذا مختلف ہے کچھ اذکار ایسے ہیں جو روح کی غذا ہیں فرشتوں کی غذا ہیں نیک صالح جنات کی غذا ہیں خود ذکر تسبیحات اعمال جو کہ روح کی غذا ہیں ان میں درود پاک وہ نعمت ہے جو روح کی غذا ہے جو جسم کی غذا ہے درود ایک عبادت ہے ایک نعمت ہے ایک غذا ہے اور ہر مرض کی دوا ہے ہر دکھ کی دوا ہے اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم اب اسی مہینے اعلان لگا ہے انشاءاللہ فروری کے آخر میں حویلی میں صرف 313 افراد ہوں گے جن کو اس کا چلہ کرایا جائے گا صرف 313 مرد اور 313 خواتین ہر درود ایک نور ہے ہر درود ایک برکت ہے اور ہر درود ایک سرور ہے روح کا جسم کا عبادتوں کا آپ ساری نماز پڑھ لیں نماز میں درود نہ پڑھیں آپ کی نماز ادھوری ہے آپ سارا کچھ کر لیں اور نماز میں نام محمد نہ آئے آپ کی نماز میرا اللہ کہتا ہے وہ نماز نہیں جو میری رب کی نماز ہے آپ کلمہ پڑھ لیں کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور اگر دوسرا حصہ آپ نہیں پڑھ رہے تو کلمہ نامکمل ہے اور کلمے کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ کلمے کا دوسرا حصہ نہیں ملے گا درود کے ساتھ محبتیں ہیں مومن کی عبادتوں کا سلسلہ ہے مومن کا کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کو مقام صرف درود سے ملا ایک بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ عام سا آدمی کوئی بڑا عبادت گزار کوئی بڑا تسبیح پڑھنے والا کوئی بہت بڑا کوئی نہیں تھا اس کا مقام مرتبہ پر اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور بخشش کا اعلیٰ سامان ہے اور بہت زیادہ مطمئن ہے تو پوچھا گیا کہ تیرے اس عمل کی وجہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ میرے اس عمل کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے اس عمل کی کہ میں ایک اللہ والوں کی محفل میں تھا میں نے درود پڑھا اور میرے درود پڑھنے پہ ساری آل محفل نے درود پڑھا اور ان میں کوئی ایسا مقبول بندہ تھا جس کا قبول ہوا تو میرا بھی قبول ہوا اور اس کی قبولیت پہ اللہ نے میری بخشش کر دی اللہ سارے پڑھے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا له اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضا له بس میری اس وجہ سے بخشش ہو میری اسی وجہ سے بخشش ہو کتنا عجیب عمل ہے کچھ لوگوں کو فاقہ آ گیا فقر آ گیا غربت آ گئی تنگستی آ گئی تو وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ کو غیب سے ہماری مدد کرو ان میں سے ایک کو خواب آیا اور خواب میں فرمایا گیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ نشانی یہ ہے کہ تو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پھر سوتا ہے گزشتہ رات تو نے 700 دفعہ پڑھا تھا اور تجھے نیند آ گئی تھی اور پھر تو نیند سے اٹھ کے تو نے 300 دفعہ پڑھ کے پورا کیا تھا لہذا وہ بندے تیرے ذمے ہیں ان کی کفالت کر. وہ وزیر تھا, اس تک وہ بات پہنچائی گئی. کہنے لگا نشانی تو بس یہ واقعی ایسی ہے اور اس کا تو میرا کسی گھر والوں کو کسی کو خبر ہی نہیں, یقیناً یہ سچی نشانی ہے اور اللہ پاک نے ان مساکین کی ضرورتوں کو پورا کر دیا. اور اس کو جو خوشی ہوئی, ایک تھیلی دی اس بات کی, یہ تھیلی اشرفیوں کی ہے, اس بات کی کہ آپ کی مدد کا حکم ملا, اور یہ اگلی تھیلی اس بات کی خوشخبری ہے کہ آقا کی بارگاہ میں میرا درود پہنچ رہا ہے. یہ اس کی خوشخبری ہے, یہ میرا درود قبول ہے. کوئی بھی عبادت کرے اس کے لیے اخلاص لازم ہے, اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں. لیکن درود پاک کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ درود واحد عبادت ہے, اگر اس میں اخلاص نہ بھی ہو, حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے. لیکن مومن ہمیشہ اخلاص کی کوشش کرتے ہیں, اگر دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے. کہنے لگا کہ یہ سارے غیر مسنون درود ہیں. وہ مولانا ایک درویش تھے, ابوبکر غزنوی رحمت اللہ علیہ, کہنے لگے تو نے تو بتا کہ تو نے مسنون درود کتنا پڑھا. تو سارے غیر مسنون ہیں, تو نے مسنون کتنا پڑھا. آئی زندگی میں کچھ سبق ہیں اور ان میں درود ہے. میں کہ قبر میں بندہ جائے گا سارے چھوڑ جائیں گے, کوئی ساتھی کوئی بھی نہیں ہوگا, ایک خوبصورت آدمی ہوگا جو اس کے قبر میں اس کی وحشتوں میں اور تنہائیوں میں اس کا ساتھی ہوگا. تو یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے, اور آج تو سارے مجھے چھوڑ گئے, پر میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا, بیٹھتے پڑھتا تھا, سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں تیرا ساتھ دوں گا. اسے ہماری تسبیحات میں, ہماری دو تین تسبیحات بڑوں نے دی ہیں, ان میں ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی ہے, کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ہے. یہ کم از کم کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح, یعنی اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنا ہرگز نہ بھول, ہرگز نہ بھول. اپنے معمولات میں درود شامل کریں, اپنی تسبیحات میں درود شامل کریں, اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں. ساری تلاوتیں مبارک, ساری تسبیحاں مبارک, لیکن اگر تلاوتوں اور تسبیحوں کے ساتھ درود پاک نہ ہوا, خطرہ ہے کہ قبولیت نہیں ہوگی. فرمایا جو عمل آسمانوں پہ جاتا ہے, جو عمل عرشوں میں جاتا ہے, وہ جس عمل کے ساتھ درود ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے, ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ عمل زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے, معلق رہتا ہے, وہ اوپر نہیں جاتا. درود پاک کی برکت سے وہ اوپر جاتا ہے, اور درود پاک کی برکت سے شرف قبولیت پاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص مچھلی لایا کہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو میں نے تلا, نہ یہ آگ پہ بھونتی ہے نہ تلتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو آگ چھوتی نہیں. تو اللہ پاک نے ان ٹکڑوں کو توفیق عطا فرمائی کہ بولے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. ایک شخص تھا جو کثرت سے درود پڑھتا تھا, اس نے آ کے ہمارے ہاں ایک ندی میں, ایک دریا میں وضو کیا, وہ درود پاک والا پانی اس نے کلی کے طور پہ پھینکا, مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے وہ مچھلی کہنے لگی پانی پی لیا, میرے اندر درود کا پانی جائے اور مجھے آگ جلائے, کیسے ہو سکتا, مجھے آگ کیسے جلا سکتا, مجھے آگ نہیں جلا سکتا, مجھے آگ نہیں جلا سکتا. ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں اور درود سے والہانہ محبت ہو, درود سے والہانہ ایک تعلق ہو. مجھے کئی واقعات ملے, کئی واقعات ملے, یہ جو عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہیں نا, کئی واقعات ملے, अम्मा कहती है मेरी बख्शिश का सामान यही दरूद बन गया। कई लोगों ने आके मुझे बताया कि मेरी बख्शिश का सामान यही दरूद बन गया। पर क्यों ना बने? जिस दरूद पाक के साथ वादा है, जो शख्स जुमे के दिन यह दरूद पाक पढ़ेगा, जुमे के दिन उसके 80 साल के गुनाह माफ होंगे, 80 साल की इबादत का स्वाद। क्यों ना हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी उम्मी वाला आलिही व बारिक वसल्लम तस्लीम। क्यों ना हो? कि अम्मा कहती है कि बेटा मेरे पास कुछ सामान नहीं था, ये दरूद पाक मेरी बख्शिश का सामान बना और ये दरूद पाक मेरी सारी जरूरतों का की किफायत बन गई। मुझे कई वाकयात मिले दरूद पाक से बरकतों इबादतों का सामान है। एक खातून थी, हमारी दीवार के साथ दीवार थी। मैं पैदा हुआ 13 रमजान को पैदा हुआ, मेरी पैदाइश थी, 9 पोह थी, पोह 13 रमजान। उसने मुझे गोद में लिया, वो आई ना घर में, तो मैं पैदा हुआ था, तो अम्मा से पूछने लगी ये कहां से आया? अल्लाह की तरफ से। उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी। मुझे याद है 25-26 साल की उम्र में वो खातून फौत हो गई। जिंदगी में कुछ कमियां कोताहियां थी, कोई मौत के तकरीबन 25-27 साल, पता नहीं कितने साल बाद, मेरी एक करीबी ने मुझे बताया कि मैंने उसको ख्वाब में देखा कि कब्र में ऐसे बैठी है, कांप रही है और कहती है कि हर तरफ से जैसे चींटियां नहीं काटती ऐसे आग की चिंगारियां हैं और मेरी 29 साल पत्नी 26 साल से मुझे खा रही है। मेरे तारीफ को कहे मुझे कुछ नहीं देता। मुझे ये पैगाम देना। अच्छा, अचानक मुझे 3.25 लाख दरूद पाक का हदिया मिला। मैंने खुद नहीं पढ़ा था, किसी मुखलिस ने हदिया दिया कि यह मेरी तरफ से आपको हदिया है, मैंने पढ़ा। मेरे दिल ही दिल में मैंने वो उसे हदिया दिया, किसी को नहीं बताया, दरूद पाक का हदिया दिया। कुछ अरसे के बाद उस बताने वाले ने मुझे बताया कि मैंने उसे देखा कि बहुत अच्छी हालत में, ताज तख लिबास लाजवाब। कहने लगा मेरे तारीफ को कहना, तेरा शुक्रिया, तेरा दरूद मुझे मिल गया। मुंतकिल कर दे, हमारी जिंदगी में बहुत दुरूद पढ़ने वाले। एक शेख मुनीर साहब मेरे पास आए, कुलीन शेख, सूटेड बूटेड एक बंदा ले आया, कहने लगे जी मेरे दोस्त हैं बैत कर ले। मैंने बैत कर लिया। मैंने कहा एक तस्बीह दुरूद पाक की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक इस्तिगफार की पढ़ लिया, तेरे बड़ा मुश्किल है, 3 तस्बीहां नहीं पढ़ सकता। एक महकमे से एक अच्छे अफसर रिटायर्ड हो गए थे। मैंने कहा पढ़ लें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा। उसको दिल की दुनिया खुली, मन के गुंचे खुले। जैसे उस दिन एक साथ कह रहे थे ना कि मुझे मेरा जिक्र पे दिल नहीं होता, अंदर से खुलता नहीं, मेरी जुबान नहीं चलती। उसकी जुबान को अल्लाह पाक ने खोला। ओहो,
कई अरब तो उसने एक सूरत इखलास पढ़ी, कई अरब दरूद पाक पढ़ा। और एक दफा मुझसे गलती हुई, उनका आया खत, मैं बैठा था, मैंने कहा ये खत अबकरी में डाल दो, हमारी किसी पिछले अबकरी में वो छपा हुआ है। वो खत क्या छपना था, वो तो बेचारे अक्ल के पैमाने से तोलने वालों के हमें खून खत कि अबकरी तो ऐसा रिसाला नहीं है जो ढकोसले और झूठ छापे, अबकरी तो ऐसा रिसाला नहीं, आपने अबकरी में ये छाप दिया, ऐसा कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन, अकल के पैमाने से तोलने वाले। मुझे कहने लगे कि मुर्शिद वो जब मैं दरूद पाक पढ़ने बैठता हूं या सूरत इखलास पढ़ने बैठता हूं, कुछ लोग आके मेरे साथ बैठ जाते हैं और वो बहुत पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूं, ऐसे होते जैसे हमारी रेस लग जाती है, जैसे ना बच्चे 1 2 3 हर बच्चा कहते मैं आगे निकल जाऊं, कह रहे ऐसी हमारी रेस लग जाती है और फिर हम पढ़ते हैं और पता नहीं मैं कितना एक ही नशिश में बैठे लाखों पढ़ लो। कुछ लोग आते हैं कहते हम तस्बीह खाने से आए हैं और वो वक्त मेरे साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या करूं, बहुत बातें आती हैं और बहुत बातें मिलती हैं, बर्तन छोटे हैं, अच्छा खासा आदमी उसको फिर दुकानदारी समझ लेता है, रियाकारी समझ लेता है, दिखावा ढोंग समझ लेता है, बर्तन छोटे हैं, दिल दरिया समंदरों डोंगे ते कौन दिलांदियां जाने हो, बर्तन छोटे कि बस मेरे साथ वो आके पढ़ना शुरू कर देते हैं दरूद। अपनी इबादतों में दरूद को शामिल करें। अपनी तस्वीरों में, अपने आमाल में, अपने जिक्र और अस्कार में दरूद को शामिल करें। हजाली करम अल्लाह वजुक से फरमाए के तशरीफ ले जा रहे थे और एक कब्रिस्तान वालों को 21 बार, एक रिवायत में 19 बार दरूद पाक पढ़ के हत्या किया और एक बंदे ने देखा कि कब्रिस्तान वाले खुश हैं, पर मैं क्या है, पर मैं एक दफा एक साले हुए थे, उन गुजरे थे, उन्होंने दरूद पाक पढ़ के हमें हदिया किया था, आज 70 साल हो गए उसका सवाब तकसीम कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। और एक रिवायत में यहां तक है कि दरूद पाक पढ़ के हदिया किया था इस कब्रिस्तान के 70,000 मैयतों की अल्लाह ने उस दरूद पाक की बरकत से बख्शिश कर दी। और दरूद दुनिया के मसाइल का हल है, कर्जों का, बीमारियों का, बे औलादियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का हल है, दरूद हल है, दरूद इबादत है, दरूद तस्बीह है, दरूद मुश्किल कुशा वजीफा है, दरूद हाजत रवा अमल है और दरूद दिलों की तस्कीन है, दरूद अंदर का निजाम है, एक जिससे दिल मुनव्वर होते हैं, तबीयतें मुअत्तर होती हैं, दरूद है। रात की बात है, मैं बैठा हुआ था, हमारे एक दोस्त है तो वो अकरी रिसाला उनका शौक है, वो लेके तकसीम करते हैं, पहले यहाँ मिचल में थे, अब गोरमे में, फूड के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, मुखलिस हैं। तो मैंने रात की बात है उनसे ऐसे बात हुई तो मुझसे कह, मैंने कहा आप क्रिश्चियन को ईसाइयों को भी रिसाला देते हैं, अरे हाँ, मैं फैसलाबाद में मेरी जॉब थी तो वहां 50 रिसाले मुस्तकिल मैंने लगाए हुए हैं, अभी भी लगाए हुए, देता हूं। तो कहने लगे कि मैं एक मेरे पास ईसाई आया और बड़े अपनी रिसाला लेके आया, उसने लेके आया तो उसमें लिखा हुआ था कि जो बंदा सल्लु अलैहि व आलिही पढ़ेगा तो उसकी औलाद हो जाए, किसी ने अपना तजर्बा लिखा था और कह लेंगे मेरा बच्चा या वर्षण हो जाता है या बच्चा होके मर जाता है, मेरा कुछ ऐसे मसाइल हैं, या बच्चा होता है दो चार दिनों का खत्म हो जाता है, या हमल ठहरता नहीं, अगर ठहरता है तो खत्म हो जाता है, इस तरह के मसाइल। तो कह लेंगे मैं तो क्रिश्चियन ईसाई हूं, फिर ये तो मुसलमानों का वजीफा है। मैंने कहा तुम हमारे नबी मोहम्मद को मानते तो हो ना, नबी हैं? कहे हाँ। बस ठीक है, तुम बहसियत नबी पढ़ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी हैं, ये तो मानते हो ना। ईसाई ने पढ़ना शुरू कर दिया सल्लु अलैहि व आलिहि, कहने लगे कुछ ही अरसे के बाद डब्बा लेके आया कि अब मेरा बच्चा डेढ़ माह का हो गया है। कितने अरसे के बाद, जाहिर है 9-10 महीने 11 साल के बाद डब्बा लेके आया वो ईसाई क्रिश्चियन कि मेरा बच्चा हो गया। शेख रहमतुल्लाह को इश्क मुस्तफा और मोहब्बत हुब आले रसूल और हुब रसूल बहुत ज्यादा गालिब था, तो एक दफा बैठे बैठे दिल ही दिल में आया और बेसाख्ता मुंह से निकला बलगल ओला बे कमाली कशफत दुजा बे जमाली हसनत जमीन साले। अब अगला लफ्ज नहीं मिल रहा, जो शायराना जौक होता है, जो शायराना मिजाज होते हैं, उसमें वजन का बहुत ख्याल होता है। वजन, अल्लाह के हबीब ने जिंदगी में एक शेर कहा है, सिद्दीक अकबर फरमाने लगे या रसूलुल्लाह वजन के एतबार से शेर ठीक नहीं, और अल्लाह ने अपने नबी का मौजजा दिखाना था। अगर वो शेर ठीक होता तो फिर दुश्मनों की ये बात ठीक होती कि ये अपनी तरफ से कुरान में खड़ के लाते हैं। बात नहीं समझ, या रसूलुल्लाह अदब से अर्ज किया, क्योंकि अरब का हर शख्स वसाहत और बलागत और शायरी में आगे था, ये शेर वजन के एतबार से कमजोर है, ठीक नहीं। आपने फरमा दिया पर वजन के एतबार से कमजोर है। मेरे रब ने अपने हबीब का ये मुजज़ा है, ये मेरे हबीब की सच्चाई और सदाकत है। ये कुरान गारों से बना के नहीं लाए, ये कुरान वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि मेरे हबीब अपने तौर पे ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं जो वो के वही ना हो जाए। ये मेरे हबीब की सदाकत और सच्चाई की अर्शी तस्दीक है कि एक शेर भी नहीं कह सके। अगर वो शेर लाजवाब होता तो फिर दुश्मनों के इल्जाम को तकवीयत मिलती। अब सोच रहे हैं कि अगला इस रुबाई को, इस शेर को पूरा करना है कैसे हो। मेरे हुजूर खाम ने तशरीफ लाए और फरमान लेकर कहे सल्लु अलैहि व आलिहि, उधर लिए मैंने पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमा दी। क्या नेमत है, क्या कमाल है। हमारे एक उस्ताद थे, उनका नाम था अजीजुर रहमान साहब। वो जिस वक्त ही कुछ अरसा हमने उनसे फारसी अरबी पढ़ी, हमारी चूंकि तिब की किताबें फारसी अरबी में, पढ़ तो ना सके पर थोड़ा सा पढ़ा। वो पुराने रीडर थे असल में जज के, और उस दौर में फारसी के इस तांबे की प्लेटों पे लिखे हुए भी वो बताते थे, दिखाए, फारसी के स्टाम्प होते थे, बहुत माहिर थे, इल्म की दुनिया थी। उनके बेटे सेशन जज अभी फौत हुए हैं। अपने बेटे के बारे में एक दफा दौरान तालीम बताया, यानी हमें वो पढ़ा रहे थे हम दोनों भाइयों को, तो एक बात सुनाई कहने लगे कि मेरी औलाद नहीं होती थी, माँ बाप को बहुत फिक्र, हत्ता के कुछ लोग आवाजें आने लगी कि इसकी और शादी करें। तो मैं गया शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद खोटवी रहमतुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, जामिया अब्बासिया जो मौजूदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, मीलों में है, उनके प्रिंसिपल थे, उनके उनके वाइस वीसी थे, वाइस चांसलर थे, शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद खोटवी। खोटा एक जगह का नाम है मुल्तान शोजाबाद के करीब। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, वो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह के खलीफा भी थे, सूफियाना मिजाज थे। तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा उस्ताद जी, क्योंकि ये जामिया अब्बासिया से पढ़े हुए थे, औलाद नहीं है, क्या कर। ऐसे देख के फरमाने लगे मौलवी अजीज कल आना मेरे पास। मैं कल गया, मैंने कहा उस्ताद जी वो औलाद का मैंने आज किया था, औलाद नहीं। अच्छा मैं भूल गया, कल आना। मैं फिर कल चला गया। ये असल में जो वाकया मुझे याद आया इस रात वाले वाक्य से, वो पिछला वाक्या याद आया, कड़ियां मिली आपस में। मैं फिर गया तो मैंने जाके ऐसे बैठा, मुझे देखा तो ऐसे खामोश अपना काम करने लगे। मैंने कहा लगता है आज भी पेशी है। मैं चुप करके उठ गया खुद। दो तीन दिन मैं ना गया, मुझे एक बंदे के जरिए इतला मिली, उस्ताद मोहतरम ने बुलवाया पीसी वाइस चांसलर कि उसे कहो मेरे मिले। तो कहने लगे कि मैं उनके पास गया। जब उनके पास गया कहने लगे भाई बात यह है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तू खुद बहुत बड़ा आलिम है, तुझे क्या वजीफा बताऊं, क्योंकि मौलवी वजीफे पढ़ाते हैं पढ़ते नहीं है, तो तुझे क्या बताऊं। मैं बहुतों के पास गया, कहीं से जवाब नहीं मिला, बहुतों के पास गया कहीं से जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैं सीधा फिर हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब के पास गया, कौन शाह वलीउल्लाह साहब के भी वाले साहब, उनके पास गया और उनसे मैंने अर्ज किया जब मेरा चहेता शागिर्द है औलाद नहीं हो रही, आप कुछ शफकत फरमाएं। तो शाह अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया उससे कहो सल्लु अलैहि व आलिही को पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े बस। तो भाई मुझे आज जवाब मिला है, हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रूहानी दुनिया में गए थे ना। शाह अब्दुल रहीम साहब को तो फौत हुए 150 से ज्यादा अरसा हो गया, रूहानी दुनिया में गए थे और वहां से इजाजत मिली और कहा कि फिर अल्लाह पाक ने बेटा दिया और फिर उसका मैंने नाम जियाउर रहमान रखा, फिर औलाद हुई। दरूद तो इबादत, दरूद तो निशानियां देती है, दरूद नस्लें देती है, दरूद सालहियत और सलाहियत का जरिया है, दरूद राहतों और बरकतों का जरिया है। जिंदगी में दरूद को शामिल करें। एक क्रिश्चियन ईसाई अगर दरूद पढ़ता है सल्लु अलैहि व आलिही, सलात व सलाम हो आका पे और उनकी आल पे, उनकी आल। मैं मदह आले रसूल हूं यही आखरत का सामान है, उनकी आल पे दरूद अपनी जिंदगियों में शामिल करें, दरूद के साथ अपनी निस्बतें बढ़ाएं, यकीन के साथ, विजदान के साथ, तवज्जो के साथ, दिल की कैफियतों और गहराइयों के साथ दरूद पाक को बैठ बैठ के पढ़ा करें। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक तस्बीह तो कम से कम दरूद पाक की लाजम है, एक तस्बीह तो लाजम है। पर एक तस्बीह पढ़ते हुए जरा मैं आज अपनी कैफियत आपको बताता हूं, एक तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो भी दरूद पाक पढ़े अल्लाह के हबीब की मोहब्बतों का एहसानात का इस्तेहजार हो। सारी दुनिया के एहसानात हैं, सारी दुनिया के, पर जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो कायनात के किसी फर्द का हो नहीं सकता। जो मेरे आका मदीने वाले का एहसान है वो दुनिया के किसी फर्द का नहीं हो सकता। मेरे मदीने वाले का एहसान आखिरी एहसान,
ये दर्द हो, अंदर ये गम हो, ये सोज हो दरूद पाक पढ़ते हुए, ये कैफियत हो। एक तस्बीह तो ऐसी पढ़ के कभी देखे, एक तस्बीह पढ़ के देखे, और वो एक तस्बीह ऐसी हो कि जिसमें दर्द हो और आका के एहसानात का इस्तेहसार हो, तो एक तस्बीह तो ऐसी पढ़ के देखे, फिर उस एक तस्बीह का कमाल देखे, फिर उस एक तस्बीह की तासीर देखे, जिसके हर दाना गिरने से पहले मदीने वाले की मोहब्बतें और एहसानात। क्या जाकर कमली वाले का हाथ ना होता, उनकी शफकतें ना होती, पता नहीं मैं कहां रुल रहा होता और किन पुजारियों में मेरा शुमार होता और कहां से कहां धक्के खाता फिर रहा होता। ये मेरे मदीने वाले का एहसान है, कमली वाले का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान, और जिंदगी में मेरा इससे बड़ा कोई एहसान नहीं। हमें जिंदगी में ये एक सबक है, हमें जिंदगी में एक निजाम है जो लेकर चलना है, और अगर हम दरूद पाक को अपनी जिंदगी से निकाल लिया, जिंदगी बेजौक हो जाएगी, और दरूद टेंशन का इलाज, दरूद मुश्किलों का इलाज, दरूद जहनी तनाव दबाव डिप्रेशन का इलाज, दरूद में राहत और सुकून है, दरूद इबादतों की जान है, दरूद इबादतों की रूह है, दरूद इबादतों की कबूलियत है, और दरूद इबादतों के लिए मोहर और स्टैंप है। अपनी जिंदगी में देखिए, ये एक छोटा सा दरूद है, सल्लु अलैहि व आलिह, इसकी तो ये तासीर है, सल्लु अलैहि, इसका तो ये तासीर है, बड़े दरूद पाक की क्या तासीर होगी और उसकी क्या शान होगी और उसकी क्या ताकत होगी। कितने वाकयात अहलुल्लाह के हैं कि उनको दरूद पाक से ही विलायत मिली और उनके मसाइल दरूद पाक ही से हल होते हैं, बस दरूद पढ़ते हैं और काम हो जाता है। ये हकीकत है, ये यकीन है, हत्ता कि यहां तक है कि जो शख्स 40 अहदीस दरूद पाक की उम्मत को दे दे, अल्लाह उसको बख्श देगा, यहां तक है। मेरी दरखास्त यह है, मैं भी आप भी अपनी जिंदगी में दरूद पाक को शामिल करें। हजरत शेखुल हदीस ने पूरी किताब लिखी है फजाइल दरूद शरीफ, हमारे बड़ों ने पूरे पूरे बाप लिखे हैं और बेहतरीन दरूद पाक का इंतखाब किया है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, उनकी इबादत, उनकी रूह, उनकी जरूरत थी इसी में। आखिरी बात एक जरा तवज्जो से सुनिए, जब दज्जाल का फितना उरूज पे होगा, तो उस वक्त जब पेट भरेगा अल्लाह के जिक्र से भरेगा, और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब दज्जाली फितने उरूज पे होंगे, जैसे कि आज दज्जाल का फितना अपने जोबन और उरूज पे है, बल्कि मुझे एक अल्लाह वाले उस दिन कहने लगे, आपका क्या ख्याल है कब क्यामत आएगी? मैंने कहा क्यों? कहा मेरे ख्याल में सारी अलामत क्यामत पूरी हो चुकी है, अगर कोई बाकी हो तो हो, या इमाम महदी का कब जहूर होगा? उनका जहूर होगा उस वक्त जब अलामत क्यामत पूरी होंगी। इस दौर में अगर कोई बंदा यह चाहता है कि मैं कब्र में मेरा नुकता जहन नशीन रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, अल्लाह मुझे भी याद दिलाए आपको भी। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कब्र में दिल रोशन लेके जाऊं, तो जहां सारी इबादतें तस्बीहात आंखों का नूर दिल का सरूर है, वहां दरूद पाक का विर्द और दरूद पाक का जिंदगी में साथ होना लाजिम है। अगर कोई चाहता है मैं दिल रोशन दिल लेके रोशन दिल लेके कब्र में जाऊं, मुनव्वर दिल रहकर कब्र में जाऊं, मुर्दा दिल रहकर कब्र में ना जाऊं, या अल्लाह के हुजूर पेशी है तो रोशन दिल लेकर जाऊं, उस दिल का वाहिद रास्ता और सामान यही, इसके अलावा कोई सामान नहीं, उसका वाहिद रास्ता और सामान नहीं।
اللہ پاک مجھے آپ کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے, اور محبت کے ساتھ ہمارے دلوں پہ ہماری زبانوں پہ اللہ درود کو جاری بھی کر دوں گا, تو ہماری خطا گناہ کی وجہ سے درود پاک جو ہے ہم سے کہیں ہم درود سے جدا نہ ہو جائیں. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. امين برحمة. کیا حال ہے, خیریت سے؟ اللہ پاک نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا, کیسا دن گزر رہا؟ کتنے روزے ہو گئے آج؟ 7 روزے ہو. کیسا دن, کیسی راتیں, کیسی صبحیں, کیسی شام. ویسے سچ پوچھیں, مجھے تو کسی کے چہرے پہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ بیچارہ کمزور ہو گیا ہو, سو ایسے نہ منہ میں دانت نہ ہو, پیٹ میں آنکھ, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ, مجھے تو پیسہ نظر نہیں آ رہا. اللہ پاک نے ایسا کوئی نظام بنا دیا ہے رحمت کا, راحت کا, عافیت کا, بہت ہی کرم اور فضل کا فیصلہ کر دیا, تو ایسا نظام بن گیا. ایسا ہے کیا کسی کو روزے نے بے چین کیا ہو؟ اچھا, آج آپ میں سے کس بندے نے سب سے زیادہ درگزر کیا؟ درگزر کا موقع ملا ہی نہیں درگزر کرے گا, موقع کیسے ملے گا؟ کس بندے نے درگزر کیا؟ کبھی جوتی پہ, کبھی ٹوائلٹ پہ, کبھی لیٹرین پہ, کبھی وضو پہ, کبھی نوالے پہ, کبھی کھانے پہ, کبھی پینے پہ, کبھی سیڑھیاں اترنے پہ. ایک بندہ ایسے آیا دوڑا ہوا, سب کو دھکا دے کے یوں یوں نکل گیا, سارے دیکھتے رہے. میرے ساتھ خود کی دفعہ ایسے ہوا, ایسے آیا ایسے نکلتے ہوئے سب کو دھکا دے کے یوں نکل گئے چلا. ہم نے چڑھنا تھا ٹرین پہ, اس پہ مینا سے ہم نے مزدلفہ جانا تھا تو ٹرین پہ چڑھنا تھا, اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنی. اب سیڑھیوں کے لیے وہ روکتے تھے, ایک کچھ ٹرین پہ نکلتے تھے, اگلے تو پھر کچھ روک دیتے تھے. پھر ایک صاحب آئے ایسے دور سے, میں نے دیکھا نا تو سب کو دھکے دیتے آ رہے ہیں, آتے 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 ایسے دھکے دیے, کسی کا نہیں.
मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा ये आएगा ख्याल करना, ये मोहरे लगवाने आ रहा है, हज कबूल हो गया हो गया हो गया। मैंने कहा ख्याल करना, ना गवारी ना कर। उसने आया ऐसे धक्का, ओ बढ़िया ओ चल जा। तो कितने लोगों के साथ हमने दरगुजर किया, अल्लाह मुझे भी ये सिफत दे, हम सबको दे। और कितना रिस्क की कदरदानी की, कितना पानी की कदरदानी की, बिजली की, पंखे की, पानी की कदरदानी की। हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मुखलिसीन तैयार बेकरार, सुबह शाम का खाना पानी जरूरियात, आपको एक पल के लिए लाइट के जाने का एहसास न हो, कूलिंग की कमी का एहसास न हो, किसी चीज का कोई एहसास ना हो, ऐसे बेहतरीन, ऐसा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम, अल्लाह इसमें बरकत आफियत अता कर, अल्लाह से आफियत मांगा। और 313 बार हमीम लायुन सारू, आफात बलियात और फितनों की हिफाजत के लिए नाजिम पढ़ा करें। ये ना हो कि वो पढ़ देगा और मैं ना पढ़ू। हर फर्द 313 बार हमीम लायुन सारू, मेरा मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का पूरा तसव्वुर करके जरूर पढ़ा करें। हम सब मोहताज हैं, हिफाजत दुआएं आमाल के मोहताज हैं। तो 313 बार ये अमाल जरूर पढ़ा करें, और भी तस्बीहात जिक्र अस्कार जो है सारे करें। इस पे आप जरा तवज्जो जरूर दीजिएगा। 313 बार हामीम ला युनसारून अवल आकर दरूद पाक के साथ जरूर किया करें। कोई सवाल ऐसे थे जो हमने अधूरे छोड़े थे? आप कोई बात? पंद्रह रजब को अल्लाह उस समय और कोई बात है? और आप क्या कहते जी? अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को रब्बी इन्नी वसअलनी अज़ुरुह जी, हाँ दांत की बात थी, ये बात थी। अभी दांत के कोई फायदे बताएं, बच्चे के दांत का कोई फायदा आपके मुशाहदे में, तजर्बे में, सुनने में, पढ़ने में, देखने में आया, बताएं, बोले। हाँ जी, किसी ने भी नहीं सुना? मैं तो कहता हूं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। बताएं, किसी ने सुना हो? हाँ जी, किसी ने? हाँ क्या हुआ? इससे आगे मैं समझ नहीं सका क्या कह रहे हैं। अम्मी के अम्मी से आगे नहीं समझा। हाँ, अम्मी कह रही थी कि अगर तुरंत बच्चे को कि तुम्हारा दांत टूटे तो मुझे देना, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी। अच्छा 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 तो अम्मी क्यों कह रही थी? ऐसी किसी वजह से नहीं कह रही होगी ना, फजूल तो नहीं कह रही। और कोई बता? आज किसी को नहीं। बच्चे का जो दांत है, हमल न हो ना हो तो उसके लिए भी है, हमल न हो ना हो तो उसके लिए भी है। एक चाहता है कि हमल मजीद ना हो, एक कहते हैं कि हमल हो ही नहीं रहा, उसके लिए भी। बल्कि यहां तक लिखा है, कोई भी मुराद हो, आप चाहते हैं पूरी हो, तो बच्चे का दांत अपने साथ रखें। मुझे ये बात जो खुली मेरे ऊपर, वो ऐसे खुली मेरे दिल में, ऐसे अल्लाह ने एक बार डाली। तो ये बार डाल कि मौला, ये नाबालिग बच्चा, ना गुनाह सोचा, ना गुनाह किया, ना गुनाह देखा, ना कुछ। बच्चे शरारते करते हैं पर वो गुनाह नहीं होते। तो इनके मुंह का नूर है, ये पाकीजा चीज है, ये पाकीजा चीज है और ये नूर है, तो ये तो इसमें आजम है। फिर इसमें आजम तो होता ही मास्टर की है, जहां लगाओ वो चाबी लग जाती है। इसके लिए मैंने इसको जमा किया, बच्चों के दांत को जमा किया और इसे मैं अपने साथ रखता हूं। तो बच्चों के दांत जमा कर लिया करें और उनकी हिफाजत किया करें। और बच्चों के दांत जमा करना कोई मसला नहीं, बच्चे ही बच्चे हैं, अमूमन उसका दांत गिरता है फेंक देते हैं, जमा कर लिया। एक बच्चे का दांत की हिफाजत किया करें, एक ऊंट की हड्डी की, ऊंट की हड्डी। ये कहते हैं जी ये तस्बीह है ऊंट की हड्डी की, मैं नहीं लेता। क्यों? कैसे पता है कि यह ऊंट की हड्डी है या नहीं है? कोई खबर नहीं। ऊंट की हड्डी है मेरे पास, मैं सहरा से लाता हूं, ऊंट की हड्डियां हैं। दीमक के लिए बहुत तजर्बा इसका, जिस घर में ऊंट की हड्डी हो। मुहद्दिसीन की रिवायात हैं कि जादू के लिए, असरात के लिए, बंदिशों के लिए, और उस घर में शयातीन ऊंट की हड्डी की बहुत रिवायात है। आपने भी कभी सुनी पढ़ी ऊंट की हड्डी का? हाथ खड़ा कर। एक तो क्या, पांव पे बांधने से जादू नहीं होता? अब दीमक के लिए और जादू जिन्नात असर नहीं करता। आप क्या बता रहे थे पीछे से? आपने हाथ खड़ा किया। जादू जिन्नात के लिए और किसी का मुशाहिदा ऊंट की हड्डी का? ऊंचा बोले। बरकत के लिए और सांस की तकलीफ होती, इसके लिए ऊंट की हड्डी। आपको किसने कहा सांस गले में बांधते? और किसी का मुशाहिदा? जी हाँ? करीब आ जाओ। आप बताओ क्या कह रहे हैं?
ये रमजान से पहले ना, ये ऊंट की हड्डी मैं अपने घर में लेकर आया, घर में हम बीमार थे, मेरी बीवी और मैं।
यहाँ से सुना?
हाँ जी, पिछली रूहानी क्लास में आपको सुना था। तो घर में जब ऊंट हड्डियाँ रखी और मैंने अपने खेल में दफन की, कुछ कपड़े कुछ वैसे रख दिए, तो अगली रात जब मैं सोया तो खार में देखा कि कुछ औरतें जो है ना 15-20 जो है مختلف حالت میں اپنا کپڑوں کے بغیر اور میں ہمارے کار سے باہر نکل رہی ہیں اور کی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ نکل رہے ہیں ابھی نا اس کی طرف جا رہے ہیں سارے. اس کے بعد میں بیماری ختم ہو گئی گھر
میں بیماریاں بوجھتا پڑا رہتا تھا اور گھر میں بیماریاں
تھیں تو وہ جو ہے ٹھیک ہو گئی.
ٹھیک ہو ٹھیک. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی جانوروں کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. ان کے گلے میں ڈالیں یا رکھیں؟ اس ہڈی کی راکھ بنا کے جانوروں کو کھلاتے ہیں بیماریوں کے لیے. اچھا جی اور بولیں. جی جیب میں رکھنے سے گھٹنے میں درد نہیں ہوتا, ختم ہو جاتا ہے جیب میں رکھنے سے. جی پاؤں میں باندھنے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا. اور کون بتا رہا؟ اونٹ کی تسبیح اگر اصلی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. اور کسی کا مشاہدہ؟ اچھا ایک چیز آپ سے سوال ہے, آپ بھی بتائیں میں بھی بتاؤں. کوئی بندہ ایسا ہے جو کوئی عادت بد چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی علت چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بس پتہ ہی نہ چلے اور وہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے. اس کے لیے کوئی اپنا تجربہ بتائیں. بتائیں کس کو ہتھیا دے؟ ہاں کہتے ہیں جس عضو سے گناہ ہو رہا ہے وہ آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, چاہے کوئی بھی, اس کو سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کا ہدیہ دے. بچوں میں شیرینی تقسیم کرے, گناہوں سے نجات ملے. ایک تجربہ. دوسرا بولیں. بیت الخلاء کی صفائی سے گناہوں سے نجات ملے گی. دو. تیسرا. ہاں جی درس میں آنے اور تسبیح خانے کی خدمت کرنے سے. چوتھا. پانچواں. جی بولیے. یا مانعوں کا ورد کرے. چھٹا بولے. ہیں ایک منٹ پیچھے سے آپ پہلے آپ بات کر لیں. کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر لا یجلیھا لوقتھا الا ھو پڑھا نظروں کی حفاظت کے لیے لاجواب ہے. نظروں کی حفاظت کے. اچھا بھائی ایک اعلان میں نے کیا تھا یہ مجالس سننے والوں سے کہ اس کو مجھے لکھ کر دیں, ہر رمضان کے ہر رات کی مجلس لکھ کر دیں. اگر کمپوز کر کے دیں تو بہت اچھا ہوگا, یہ ہم چھاپیں گے, اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا, میری بات سننے والے توجہ کریں گے. اچھا جی اگلا بندہ کیا بتا رہے؟ احدر سستا کل مو. ہاں ہمارے رشتے دار تھے دبئی میں, یہاں کے آئس پینے لگے, نشہ آئس پینے لگے. پھر ان کی والدہ کو بتایا, وہ کہتے ہیں ان کی والدہ نے خوب پڑھا توجہ سے, اس نے چھوڑ دی اور کل یہاں تسبیح خانے میں آ رہا ہے. اچھا جی آپ ہاں جی بھائی اس کو قریب کر دو. ہاں جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے دو رکعت نماز نفل پڑھے. جی جماعت نماز کی پابندی کرے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. جی وہیں بیٹھے. ہاں ऊंट का अगर अपने पास रखे तो उस इल्लत से जान छूट जाएगी, ये कैसे आपने बताया? कभी आजमाया? ठीक, ऊंट का नाखून अपने साथ रखें तो इल्लत से जान छूट जाएगी। अगला बंदा कौन बता रहा? अगला बंदा जी, नाखून काटें और उस पर एक तस्बीह पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसको दफन कर दें सफेद कपड़े में, तो आदत बद खत्म हो जाती है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह 35 बार हर नमाज के बाद पढ़ने से इंसान की आदत बद खत्म हो जाती है। जी, इस्तिगफार की कसरत से भी यह आदत खत्म हो जाए, दम वाले तेल और पानी से। पुरानी कब्र की मिट्टी पर सूरत यासीन पढ़कर क्या करें? फलदार दरख्त के नीचे दफन करें। कितनी दफा सूरत यासीन? 12 दफा सूरत यासीन पुरानी कब्र की मिट्टी पर। एक बार पढ़ने से भी अमल पूरा हो जाता है। कुछ अर्सा करें, एक ही दफा करें और नाम लेकर दफन करें वो मिट्टी। जी, हाँ जी, आप बताएं। या तहारो नाक पे उंगली रख के और सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दे। और कहते हैं, नाखून वाला अमल मैंने 2 दफा किया है, मुझे गालियां देने की बहुत आदत थी, वो बहुत हद तक खत्म हो गई है। ये सामने बैठे और जी
जादू का अमल तो बता दिया था, अल्लाह वाले अर्ज कर दिया था आपके लिए, तो समझा दें, जादू का तो बताया था कि
पहले कलमे का व्यर्थ करें, गुनाह छोड़ने की नियत से सदका करें और मौत को कसरत से याद करें, गुनाह छूट जाएगा। और भाई ऊंचा बोले, जो बच्चा तंग कर रहा हो खामोश होके सांस रोक के जमजम पढ़ना शुरू करें, वो चुप हो जाएगा। और गुनाह के बारे में कोई छोड़ने के बारे में बताएं, जरूर बताएं। मस्जिद के बैतुल खला धोने, धोने ठीक, और वॉशरूम की बैतुल खला की दुआ को तरतीब में लाएं, अमल में लाएं, तो उससे भी नजात मिलती। जी, सूरत मायदा की आयत नंबर 90 वो कौन सी है? आयत नंबर 90 भाई, सूरत मायदा की आयत नंबर 90 कौन सी है? आपके इल्म में नहीं, भूल गई। अच्छा, तो किस मकसद के लिए? बुराई को खत्म करने के लिए। अभी देख लेते हैं, लोग बताते हैं। कहते, मेरा पेट खराब रहता था, दर्द रहता था, मोशन रहते थे, जब से मैंने बैतुल खला की दुआ को सुना सा तस्बीह खाने से मामूल बनाया है, मेरी सब मसले हल हो गए। नाफ टल जाती थी तो ये बैतुल खला की दुआ नाफ का भी इलाज है। जब भूल जाता हूं तो सबसे पेट खराब हो जाता है, यानी जब भी मैं डंडी मारता हूं तो डंडा लगता है, डंडी मारता हूं तो डंडा लगता है। और बताएं, आयात कुतुब ये पढ़ने से कोई आदत इल्लत छूट जाती है, है? अभी तो एक सवाल तो खत्म नहीं हुआ, अल्लाह वालो अभी तो सवालात की निश्चित शुरू नहीं हुई। और ये जो मैं सवाल आज आपसे कर रहा हूं, ये मुझसे सवाल किए गए हैं, ये जो मैं आप हजरात ही के सवाल दोहरा रहा हूं, ये सारे मैं आपके सवाल दोहरा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं मुझ समेत वो बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम भी ना आए और हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। अल्लाह वालों, ये सारे मैं सवालों के जवाब ही दोहरा रहा हूं, आप हजरात के सवालों के जवाब दोहरा रहा हूं। हाँ जी बोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। हाँ, ये आपने कहां से हासिल किया, क्या हुआ, कितनी तादाद पढ़नी है, कोई बताया नहीं। दा तादाद ठीक। हाँ जी और कल एक आदमी ने सूद की जान लानत से जान छुड़ाने के लिए तो कहते हैं दुआ है अल्लाहुम अक्फिनी बे हलाले का हराम का अगननी वे पदने काम। अच्छा जी, इस तरफ से कोई एक बंदा सवाल करे, सवाल ही नहीं करते, इधर से कोई सवाल करे जी। उलमा से पूछो भाई, मसाइल तो उलमा से पूछो जी। कहते हैं मेरे वालिद को तकलीफ है, वो 6 महीने चुप रहते हैं, 6 महीने के बाद बोलते हैं तो गालियां बहुत देते हैं, खुद परेशान, घर वालों को परेशान, मोहल्ले को परेशान करते हैं, 6 महीने चुप, फिर 6 महीने के बाद बोलते हैं। क्या नाम है उनका, कहां से आए हैं? हाँ जी बताएं इसका क्या इलाज है। वो कहते हैं 6 महीने चुप रहते हैं, फिर 6 महीने बहुत बोलते हैं और बहुत ही सही नहीं बोलते। बोले भाई, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरहिम, ये पढ़े। और या मानियो या सबूरो या काबिजो, या मानियो या सबूरो या काबिजो, बहुत कसरत से पढ़ें उनका तसव्वुर करके, इंशाल्लाह ये आदत छूट जाएगी। बहुत कसरत से, और उनाब सपिस्तान और बहीदाना, उनाब सपिस्तान और बहीदाना, 21 उनाब 21 सपिस्तान, एक बड़ा चम्मच बहीदाने का, रात को कूट के एक कड़वी पानी में, किलो पानी में भिगोएं, सुबह उबाल के, गर्मियां हो तो ठंडा करके, सर्दी हो तो गर्म करके, सारा दिन ये पानी पिला दें, शाम को फिर भिगो दें। चंद दिन चंद हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तीसरी और आखिरी दफा फिर कह रहा हूं, उनाब सपिस्ता और बहीदाना, उनाब 21 दाने, सपिस्ता 21 दाने। देखे पहले यूं करके सुन रहे थे, जब मैंने कहा आखिरी दफा लगा के दिख रहे हैं, चुप करके सुन रहे हैं,
फिर बाद में कहेंगे बस, जब मैंने कहा ना आखिरी दफा कह रहा हूं फिर लिखना शुरू। और किसी का सवाल आप इस तरफ से जी? कहते हैं बच्चे का हाथ वो निकालना होता है या गिर जाए? अरे नहीं भाई, जो खुद नहीं भाई जान, खुद गिरे जो भाई। खामोश रहिए, करीब आ जाए। हाँ जी, हाँ तो 5 साल तक 10 साल तक तो खराब नहीं हो जी। कहते हैं लड़ाई झगड़ा घर घर आम हो गया है, इसको रोकने के लिए कोई दुआ और वजीफा बताएं, बताएं। सूरत निसा का जो खत्म किया उसके लिए बहुत फायदेमंद है, एक साहब ने बताया। दूसरा जी, जो घर में नमक रखा उस पर 11,000 दफा या वदूदो पढ़ना है, 11,000 11 मरतबा। अब अलाकर दरूद पाक के साथ और वही नमक इस्तेमाल करना। जब हंडिया आग के ऊपर हो उस वक्त नमक न डालें, बाद में डालें। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी या वदूदों के अमल से जी। घर में सलाम को आम करें, सूरत इखलास पढ़ें जी। अभी तो एक सवाल खत्म है। हाँ जी, रब्बना हबलना वाली दुआ का कहते हैं बहुत मुशाहिदा किया है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता जी। सूरत इखलास पढ़ के घर में दाखिल हो सलाम करें, अल्लाह समद की कसरत करें जी। अशहाबे कहफ का नाम का नक्श लिख कर घर में वो रखे जी। रूहानी अगरबत्ती का एहतमाम करें। तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ के, जिससे लड़ाई झगड़ा उसकी रूह को हदिया करें जी। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, ये बिल्कुल ठीक है, बैतुल खला की दुआ से झगड़े खत्म होते हैं जी। सूरत तहा की आयत नंबर 39, व अलखत अलैक मोहब्बत मिन्नी वलितुस्ना अला ऐन, 11 मरतबा हर खाने पीने वाली चीज पे दम करें, घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अफहसिब्त और अजान की तिलावत करें भी सही, उसकी रिकॉर्डिंग घर में मुसलसल चलाएं लगाएं, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और यानी सूरत कौन सी? सुजासिन 1,000 दफा ना, मेरे पास भी एक अमल है सर, मगर मच्छ के पीते वाला। और कोई बताएं? वल काजिमीन अलगाइस वल आफीन अनिन्नास, ये अमल पढ़े मुस्तकिल तो घरेलू झगड़े खत्म हो जाते। दरूद ताज पढ़ने से 40 जुमेरात पढ़ा जाए, कितनी दफा? 3 दफा हर जुमेरात को पढ़ा जाए। अच्छा, हर नमाज के बाद पढ़ा जाए 40 दिन, शबे जुमा को पढ़ना है कितनी दफा? भाई पहले पूछ ले। हाँ जी,
घर में दाखिल होते हुए सलाम और इखलास सूरत इखलास पढ़ें, झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, क्या बताया? इन्होंने नहीं बताया अभी, और किसी ने? अजान हल्की आवाज घर में चलानी, जब लड़ाई हो तो जमजम पड़े। ठीक है, और किसी ने कोई मुशाहिदा तजर्बा आपने बताया? जी लड़ाई में हजरत उमर का नाम लिया गया, उमर उमर, क्योंकि शैतान भाग जाता है। जी हर नमाज के बाद दो अनमोल खजाने पढ़ने से झगड़े खत्म हो जाते हैं, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। वल्लाहु वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तंकीला, यही वल्लाहु अशद्दु, तो क्या पढ़े? वल्लाहु अशद्दु लड़ाई के दौरान पढ़ें, लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी माफी मांगे इस तसव्वुर से कि अल्लाह सुलह करने वाले को पसंद करते, और रब्बना हबलना वाली सारी दुआ कहते मैंने बहुत आजमाया है, बहुत फायदा हुआ है। नमाज के यत्ता याद पढ़ने हैं। जी है जी, जो जिन्नात का तहदीदी नामा है उसकी फोटो कॉपी घर में लगाएं। जी किस वक्त पढ़े ये दुआ? लड़ाई के दौरान। और LCD को बंद करके 5 वक्त की नमाज पढ़ें। लड़ाई के दौरान ताक अदद में या कादिर हो या नाफे ओ पढ़ें, खत्म हो जाएगी लड़ाई। अच्छा, इधर भी सवाल हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी अभी रहता है। हाँ, क्योंकि इधर में मुझे बड़ा खतरा रहता है, इधर वाले सोते भी हैं, तवज्जो भी माशाल्लाह खूब होती है। एक साहब अभी यहां बैठे हुए थे, आंखें बंद करते जाते अब खुद उठ के ही चले गए। हाँ जी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की बीमारी है, इसका क्या इलाज है? या मिर्गी का दौरा पड़े उसके कानों में अजान दो, गधे का नाखून उसके गले या बाजू में बांधे। कहते हैं जब मिर्गी का दौरा पड़े तो जूती सुंघाएं, लेकिन जूती चमड़े की हो। कल मैंने चमड़े के बारे में बात कही थी, कल या परसों, इसमें मैंने अर्ज किया था चमड़े का प्याला, चमड़े का मशीजा। जी और किसी मुशाहिदा और कौन बता रहा था इसका? कह रहे 10-15 साल से मिर्गी थी तो उसको रूहानी फक्की खिलाई है तो मिर्गी खत्म हो गई, 5-10 कबियां खिलाई। जी जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है उसका जो पानी गिरता है वो पानी अगर मिर्गी वाले को पिलाएं तो उसका, ये आपने कहां से सुना? हां जी, अच्छा उस दोस्त ने बताया कि मेरा कारोबार ही यही है, जो मिर्गी वाला मरीज मेरे पास आता है उसको वो पानी देता हूं, पानी वही पिए, पानी संभाल के रख देता हूं, मैयत को नहलाने वाला पानी। जी हर दो घंटे के बाद आफा सिप्तम और अजान वाला अमल करें। जी आग के ऊपर एक कीड़ा होता है, शीशे की बोतल में बंद करें, धूप में रखें, मर जाएगा, मसल के पाउडर बन जाएगा, उसकी नसवार देनी है, नसवार या खिलाना है, खिलाना है। ठीक, भैंसों की बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। कौन सी बीमारी? मुंह में मुंह पक जाते हैं, पीछा निकालने लग जाती है, मुंह पक जाता है, उसको रोटी में डाल के खिलाए भैंसों को। तंबाकू के पत्ते का कहवा बना के मिर्गी वाले को पिलाए। अच्छा जी, हाँ जी, اللہم بسم کا اموت و آہیہ پڑھنے سے، ایک صاحب نے تسبیح خانے میں کہتے ہیں بتایا تھا، پڑھنے سے دورے بند ہو گئے۔ اور بتائیں، بسم اللہ کے تعویذ استعمال کریں۔ اور بتائیں، हरी तूड़ी वो जो कड़वी हो उसका पानी निकालें और तिलों के तेल में जला लें, वो पानी नाक में डालें और पिए भी सही वो तेल, तो मिर्गी खत्म हो जाती। हमारी एक दवा कहते हैं जौहर शिफाए मदीना, 70 शिफाए और हार्मोन शिफा, कई लोगों को दिया, उनकी मिर्गी खत्म हो गई। ठीक है, चलो जी आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर छुट्टी है। यूरिक एसिड का इलाज।
अच्छा जी, ये बताइए
कोई ऐसा चुटकुला बताएं कि हफ्तों और महीनों में बच्चे का कद बढ़ जाए। चुटकुला हो बहुत असर। ऐनक भी उतर जाती है तुख मलंगा इस्तेमाल करने से, बालंगू इस्तेमाल करने से। आदमी आपको कैसे पता, कुछ तजर्बा किया आपने? कुछ तजर्बा किया और किसी का पता? हाँ और कोई चीज बताए। कोई चीज और बताए। ठीक, मुझे तफसील से लिख के दे रहे, बाकी लिख के दे रहे, इसके पीछे वो भी लिख के दे रहे। जी हाँ, सुबह नहार मुंह केले और मिल्क शेक दूध का, केले और दूध में मिल्क शेक पीने से कद बढ़ जाता है। जी पीली कौड़ी कंगी बूटी में, कंगी बूटी तो आम है, पहचान है मुझे कंगी बूटी, आजकल कंगी बूटी बहुत है, आजकल बहुत इतनी इतनी है बड़ी, उसी में कुछ ना कर ले। कितनी मेदार में? छोटा कैप्सूल दे दे रोजाना एक या दो, सोलह सत्रह साल की थोड़ी मिकदार में, एक रत्ती की मिकदार, खजूर और दूध का मिल्क शेक दे। आपने एक कौड़ी का नुस्खा कहां से लिया? ठीक, आजमाया और किसी का मुशाहिदा? बांस की जड़ जो है बहुत ज्यादा फायदा देती है पीस के। ये अबकरी में छपा है, आपने इसको आजमाया? उनको बताया बांस की जड़ तो बताया कि बच्ची का कद बढ़ गया, फायदा हो गया। जैतून का तेल दूध के अंदर डाल के पीने से कद बढ़ जाता है। और वो कल इंशा बताइए कल। अच्छा जी, और कोई कद के लिए बताना चाहता है? आखिरी सागू दाने का नाश्ता करने से, बिल्कुल ठीक जी। माजून शिफा कौन सी? अच्छा, कहते हैं पांच साल का बच्चा था, अच्छा डेढ़ साल का बच्चा था, छह महीने का लग रहा था, तो आपने क्या बताया? माजून शिफा याबी, आपका तजर्बा है, उसको इस्तेमाल कराया चने के बराबर, काली मिर्च के दाने के बराबर। उसने बच्चा फिर लाके दिखाया, कुछ अर्सा इस्तेमाल कराया काली मिर्च के दाने के बराबर दिन में चंद बार। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, बहुत सारा वक्त आपका हजरात का ले लिया, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको दुनिया आखरत की खैरें अता फरमाए। बस यहाँ रहें और अदब से रहें, इकराम से रहें, और यहाँ का अदब हो हमारे दिलों में, हमारी तबीयतों में। अल्लाह इस अदब की वजह से हमें दुनिया आखरत की बरकतों और खैरों से नवाजे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।